एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पर शायद थोड़े कम चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ, विषय है उत्तर अमेरिकी मूल निवासियों का इतिहास।
बिल्कुल, और इसके लिए हम थेडा परड्यू और माइकल डी ग्रीन की दो अहम किताबों को देख रहे हैं। एक है नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस और दूसरी इसी विषय पर उनकी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये विषय आज भी मतलब बहुत जरूरी है।
क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको?
देखिए, ये हमें सिखाता है कि इतिहास को कैसे अलग नजरिए से देखें, मतलब जो कहानियां हमें आमतौर पर सुनाई जाती हैं उन पर सवाल कैसे उठाएं। और ये उन समुदायों की कहानी है जिन्होंने इतने जबरदस्त बदलाव झेले लेकिन फिर भी अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। वो लचीलापन, वो अनुकूलन, ये आज भी प्रासंगिक है।
सही कहा, अक्सर उन्हें इतिहास में जैसे सिर्फ पीड़ित की तरह दिखाया जाता है ना?
बिल्कुल, लेकिन ये किताबें उन्हें उनके इतिहास के सक्रिय निर्माता के तौर पर देखती हैं। वो सिर्फ झेल नहीं रहे थे, वो फैसले ले रहे थे, चीजें बना रहे थे।
तो चलिए इसी नजरिए से उनकी कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं।
हाँ, और शुरू करने से पहले शायद लेखकों के बारे में जानना भी अच्छा रहेगा। थिएडा परड्यू और माइकल डी ग्रीन,
बताइए इनके बारे में।
दोनों ही अमेरिकी मूल निवासी इतिहास के मतलब बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। खासकर दक्षिण पूर्वी जनजातियों पर इनका काम है, जैसे चिरोकी और क्रीक लोग।
अच्छा,
थिएडा परड्यू यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में प्रोफेसर एमेरिटा हैं। उनका काम ज्यादातर इस पर रहा है कि कैसे लिंग, संस्कृति, पहचान, ये सब चीजें बाहरी दबावों के बावजूद बनी रहीं।
और माइकल ग्रीन?
माइकल ग्रीन जो अब नहीं रहे, वो भी वहीं प्रोफेसर थे। उनकी खासियत थी राजनीतिक इतिहास और संघीय भारतीय नीति, मतलब अमेरिकी सरकार और मूल निवासियों के बीच जो रिश्ते रहे, जो नीतियां बनी,
उसका उतार चढ़ाव।
हाँ बिल्कुल, और इन दोनों का साथ आना इस विषय को एक खास गहराई देता है।
कैसे?
एक का फोकस संस्कृति और समाज पर, दूसरे का राजनीति और नीति पर, और उनका जो नजरिया है वो है एथनो हिस्ट्री।
एथनो हिस्ट्री, ये क्या होता है?
मतलब इतिहास को सिर्फ बाहरी दस्तावेजों या जीतने वालों की नजर से नहीं देखना, बल्कि मूल निवासियों के अपने नजरिए, उनकी यादों, उनकी कहानियों, उनके अनुभवों को केंद्र में रखना।
अच्छा, तो ये तो पारंपरिक इतिहास से काफी अलग हुआ।
हाँ, इसीलिए ये उन घिसी पिटी धारणाओं से बच पाते हैं कि सारे इंडियन एक जैसे थे। ये उनकी विविधता और उनकी अपनी एजेंसी, मतलब उनके अपने फैसले लेने की क्षमता पर जोर देते हैं।
तो फिर इन किताबों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, ये किताबें मूल अमेरिकी इतिहास का एक बहुत बड़ा कैनवस पेश करती हैं और ये उस पारंपरिक यूरोपीय अमेरिकी कहानी को चुनौती देती हैं जिसमें मूल निवासियों को या तो जंगली दिखाया जाता है या फिर बेचारे लुप्त होते हुए।
हाँ, वो स्टीरियोटाइप।
बिल्कुल, तो इनका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि हमारी सोच को सही करना भी है। जो सरल और अक्सर गलत धारणाएं हैं उन्हें हटाकर एक जटिल, बहुआयामी और ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करना।
तो इनका केंद्रीय तर्क क्या हुआ, मतलब द मेन आर्ग्यूमेंट?
कोर आइडिया यह है कि मूल अमेरिकी अपने इतिहास में पैसिव विक्टिम्स नहीं थे, मूक दर्शक या लाचार शिकार नहीं।
अच्छा,
वे सक्रियकर्ता थे, एक्टिव एजेंट्स। उन्होंने यूरोपीय ताकतों और बाद में अमेरिकी सरकार के साथ जो मुश्किल रिश्ते थे उनमें लगातार खुद को ढाला, बातचीत की, विरोध किया और सबसे अहम, वे टिके रहे, सर्वाइव किया।
तो ये सिर्फ जुल्म की कहानी नहीं है?
नहीं, ये लचीलेपन और एजेंसी की कहानी है, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता की कहानी है।
दिलचस्प। तो किताबें ये सवाल उठाती हैं कि इतने बड़े विनाशकारी बदलावों के बावजूद उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक आजादी कैसे बचाई।
हाँ, और लेखक कहते हैं कि इसे समझने के लिए हमें सिर्फ जुल्म की कहानियों से आगे बढ़ना होगा, उन चालाकी भरे, उन परिष्कृत तरीकों को देखना होगा जिनसे उन्होंने आधुनिकता का सामना किया, अपनी संप्रभुता बनाए रखी और 5 सदियों के इतने बड़े बदलावों के बाद भी अपने समुदायों को जिंदा रखा।
तो ये किताबें हमें एक लंबे सफर पर ले जाती हैं।
बिल्कुल, यूरोपीय संपर्क से पहले के दौर से शुरू होकर फिर उपनिवेशवाद, फिर जमीनों से बेदखली, फिर वो आत्मसातकरण की कोशिशें और आज के दौर में संप्रभुता के लिए उनका संघर्ष तक, एक बहुत बड़ी फैली हुई कहानी है।
चलिए इस कहानी के कुछ अहम मोड़ों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरू करते हैं यूरोपीय लोगों के आने से भी पहले के समय से। ये जानना क्यों जरूरी है?
ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि अमेरिका कोई खाली महाद्वीप था जिसे यूरोपीय लोगों ने आकर खोजा और बसाया।
अच्छा, ऐसा नहीं था।
बिल्कुल नहीं, यहाँ हजारों सालों से तरह तरह के जटिल समाज फल फूल रहे थे। सोचिए मिसिसिपियन संस्कृति का शहर कहोकिया, आज के सेंट लुइस के पास। वो उस समय दुनिया के बड़े शहरों में से एक था, अपनी खेती, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था के साथ।
कहोकिया, मैंने सुना है इसके बारे में।
हाँ, या फिर दक्षिण पश्चिम में एंसेस्ट्रल प्यूब्लोन्स, जिन्होंने चाको कैनियन जैसी अद्भुत जगहें बनाई।
और ये सिर्फ बड़े शहर ही नहीं थे।
नहीं, कहीं उन्नत खेती वाले समाज थे तो कहीं शिकार पर जीने वाली संस्कृतियां, और इन सब के बीच पूरे महाद्वीप में फैला हुआ व्यापार का नेटवर्क था। मतलब यहाँ पहले से ही स्थायी और विकसित जीवन शैलियां थीं।
तो यूरोपीय लोग किसी खाली जगह पर नहीं आए थे।
बिल्कुल नहीं।
फिर यूरोपीय पहला संपर्क, लेकिन जैसा किताबें कहती हैं, ये सिर्फ एक तरफा कब्जा नहीं था।
नहीं, ये बातचीत, सौदेबाजी और एक दूसरे को समझने अपनाने का भी दौर था। हाँ, ताकत का संतुलन बराबर नहीं था, जाहिर है। पर अलग अलग जनजातियों ने अलग अलग रणनीतियां अपनाई। जैसे वर्जीनिया में पावाहटन लोगों ने अंग्रेजों से कभी सहयोग किया, कभी लड़े, या उत्तर पूर्व में शक्तिशाली इरोक्वाइस लीग ने फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच अपनी जगह बनाई कूटनीति से।
तो यहाँ मूल निवासियों की एजेंसी साफ दिखती है।
हाँ बिल्कुल, वो यूरोपीय सामानों का इस्तेमाल भी अपनी शर्तों पर, अपनी जरूरत के हिसाब से करते थे, सिर्फ नकल नहीं।
लेकिन इस संपर्क का एक बहुत ही भयानक पहलू भी था, बीमारियां।
हाँ, कोलंबियन एक्सचेंज का ये सबसे दुखद हिस्सा था, जिसे वर्जिन सॉइल एपिडेमिक्स कहते हैं।
मतलब
ऐसी बीमारियां, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, जिनका सामना मूल निवासियों ने पहले कभी नहीं किया था। उनके शरीर में इनसे लड़ने की क्षमता ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में, मतलब 90% तक आबादी खत्म हो गई। ये किसी भी युद्ध से ज्यादा विनाशकारी था।
90%?
हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि अलग अलग यूरोपीय ताकतों, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेज के इरादे और तरीके भी अलग थे, उनका असर भी अलग अलग पड़ा।
इसके बाद अमेरिकी क्रांति का दौर आया, उसमें क्या हुआ?
वहां भी उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए। कई मूल राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता और जमीनी हक बचाने के लिए हिसाब किताब लगाकर तय किया कि क्रांति में किसका साथ दें या तटस्थ रहें।
अच्छा, मतलब वो भी राजनीति कर रहे थे।
बिल्कुल, जोसेफ ब्रेंट मोहॉक या लिटिल टर्टल मियामी जैसे नेता उस दौर की कूटनीति में माहिर थे, और इसी समय अमेरिकी सरकार ने संधियों और ट्रस्ट जिम्मेदारी जैसी शुरुआती नीतियां बनाई। हालांकि ये अक्सर आदर्शों से ज्यादा अपनी जरूरतों से तय होती थी।
लेकिन ये संधियां ज्यादा दिन नहीं चली है ना। फिर आया 1830 के दशक का निष्कासन यानी रिमूवल का दौर।
हाँ, ये अमेरिकी इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है, लेकिन किताबें इसे भी सिर्फ एक तरफा जुल्म की तरह नहीं दिखाती।
मतलब
बताती हैं कि इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ, कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं, बातचीत की कोशिशें हुईं। जो दक्षिण पूर्व की 5 जनजातियां थीं, जिन्हें सभ्य जनजातियां कहा जाता था, चेरोकी, क्रीक, चौकटा, चिकसों, सबने अलग अलग रास्ते अपनाए।
मैंने चेरोकी के बारे में पढ़ा है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी जीता था।
हाँ बिल्कुल, वॉस्टर वर्सेस जॉर्जिया। कोर्ट ने माना कि जॉर्जिया राज्य का कानून चेरोकी राष्ट्र पर लागू नहीं होता, उनकी अपनी संप्रभुता है।
तो फिर क्या हुआ?
तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। और नतीजा हुआ आंसुओं की राह, ट्रेल ऑफ टीयर्स। हजारों लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से जबरदस्ती निकाला गया, हजारों मील दूर पैदल नावों से भिजा गया। रास्ते में ठंड, भूख, बीमारियों से हजारों लोग मर गए।
ये तो
भयानक है। ये राज्य द्वारा प्रायोजित जातीय सफाया था, एथनिक क्लिंजिंग। लेकिन यहां भी कहानी खत्म नहीं होती। लेखक उन समुदायों पर भी ध्यान दिलाते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक विरोध किया या फिर नई इंडियन टेरिटरी में जाकर अपने समाजों को फिर से खड़ा किया। वो लचीरापन यहां भी दिखता है।
फिर अमेरिकी गृह युद्ध, सिविल वॉर हुआ, उसका भी असर पड़ा होगा इन समुदायों पर।
हाँ बिल्कुल, गृह युद्ध में भी मूल राष्ट्र बटे हुए थे। कुछ ने यूनियन का साथ दिया, कुछ ने कन्फेडरेसी का, अक्सर अपने अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों और संधियों के आधार पर।
अच्छा,
और युद्ध के बाद उन पर आत्मसातकरण का दबाव और बढ़ गया, मतलब अपनी पहचान छोड़कर अमेरिकी मुख्य धारा में घुल मिल जाने का दबाव। संघीय सरकार ने उनकी जनजातीय सरकारों पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की।
और इसी आत्मसातकरण के दौर में वो बोर्डिंग स्कूल और डेविस एक्ट जैसी नीतियां आईं।
हाँ, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ये नीतियां अपने चरम पर थी। ये मूल संस्कृतियों को जड़ से मिटाने का एक सोचा समझा सिस्टमैटिक प्रयास था।
बोर्डिंग स्कूल,
ये तो बहुत ही क्रूर लगते हैं सुनने में।
थे भी, हजारों बच्चों को उनके परिवारों से छीनकर दूर ले जाया गया, उनकी भाषा बोलने पर, उनके कपड़े पहनने पर, उनके रीति रिवाज मानने पर पाबंदी लगा दी गई। मकसद साफ था, जैसा एक अधिकारी ने कहा भी था, किल द इंडियन सेव द मैन,
भारतीयों को मारो इंसान को बचाओ, मतलब उनकी पहचान ही मिटा दो।
हाँ, ये सांस्कृतिक नरसंहार से कम नहीं था। हालांकि ये भी सच है कि कुछ छात्रों ने इसी शिक्षा का इस्तेमाल बाद में अपने लोगों की आवाज बनने के लिए भी किया।
और डावेज एक्ट, उसने क्या किया?
डावेज एक्ट 1887 का, उसने जनजातियों की जो सामूहिक जमीन थी उसे व्यक्तिगत परिवारों में बांट दिया।
क्यों?
कहने को तो ये उन्हें जिम्मेदार किसान बनाने के लिए था, लेकिन असली मकसद था जनजातीय एकता को तोड़ना और जो जमीन बच गई उसे गैर मूल निवासियों को बेच देना।
ओह, तो इससे उनकी जमीन भी गई और सामाजिक ढांचा भी कमजोर हुआ। बिल्कुल, इसने न सिर्फ उनकी जमीन का आधार छीना बल्कि उनकी सामाजिक संरचना और रिश्तेदारी के ताने बाने पर भी हमला किया जो सामूहिक जीवन पर आधारित थे।
तो क्या 20वीं सदी में सिर्फ दमन ही चलता रहा या कुछ बदला भी?
नहीं नहीं, 20वीं सदी में प्रतिरोध और पुनरुत्थान के नए रूप सामने आए।
अच्छा, कैसे?
अलग अलग जनजातियों के लोग साझा मुद्दों पर एकजुट होने लगे। इसे अखिल भारतीय आंदोलन कहते हैं। नेशनल कांग्रेस ऑफ अमेरिकन इंडियंस NCAI जैसे संगठन बने जो राजनीतिक स्तर पर अपनी बात रखते थे।
और सरकारी नीतियों में भी कुछ बदलाव आए?
हाँ, कुछ आए। 1924 में सभी मूल निवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिल गई। फिर 1934 में आया भारतीय पुनर्गठन अधिनियम IRA। इसने आत्मसातकरण की नीति को पलटा, जनजातीय सरकारों को फिर से संगठित होने और कुछ अधिकार देने की कोशिश की।
तो ये एक सकारात्मक बदलाव था?
हाँ, कुछ हद तक, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। 1950 के दशक में फिर से टर्मिनेशन पॉलिसी आ गई।
टर्मिनेशन मतलब?
मतलब जनजातियों का संघीय दर्जा खत्म करना, उन्हें पूरी तरह राज्यों के अधीन लाना। ये फिर से आत्मसातकरण की तरफ एक कदम था।
ओ, तो ये तो पीछे जाने जैसा हुआ।
हाँ, और इसके खिलाफ फिर जबरदस्त विरोध हुआ जिसने 1960 और 70 के दशक के रेड पावर मूवमेंट और अमेरिकन इंडियन मूवमेंट AIM जैसे ज्यादा मुखर आंदोलनों को जन्म दिया।
AIM? हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है, ये काफी जुझारू थे।
बिल्कुल, सीधे टकराव और विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे।
और आज की क्या स्थिति है, मतलब वर्तमान में?
1970s के दशक से सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी स्वनिर्धारण की नीति लागू है। ये जनजातियों को अपने मामलों में ज्यादा नियंत्रण देती है। आज चुनौतियों भी हैं, उपलब्धियां भी। कुछ जनजातियों ने कैसीनो गेमिंग से काफी आर्थिक विकास किया है। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे, जैसे स्टैंडिंग रॉक में तेल पाइपलाइन का विरोध हुआ था, वो उन्हें फिर से एकजुट करते हैं। अपनी भाषाएं बचाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। संधि अधिकारों और संप्रभुता को लेकर कानूनी लड़ाइयां आज भी जारी हैं।
तो मतलब वो संघर्ष और अनुकूलन आज भी जारी है?
हाँ बिल्कुल, अपनी पहचान बनाए रखते हुए आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाने का वो सिलसिला लगातार जारी है।
इस पूरी लंबी कहानी से कुछ खास बातें या कहूँ के थीम्स उभर कर आती हैं। सबसे पहली तो शायद वही है जो आपने शुरू में कही थी, एजेंसी और प्रतिरोध।
हाँ, कि वो कभी सिर्फ चुपचाप सहने वाले पीड़ित नहीं थे, उन्होंने हर दौर में हर चुनौती का सामना अपने समझ और रणनीति से किया, चाहे वो कूटनीति हो, व्यापार हो, युद्ध हो, कानूनी लड़ाई हो, या फिर अपनी संस्कृति को बचाए रखने के नए नए तरीके हों।
दूसरी अहम बात है सांस्कृतिक अनुकूलन और निरंतरता। हमें लगता है कि संस्कृति बदल गई तो मतलब खत्म हो गई।
हाँ, जबकि ये किताबें दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने बाहरी बदलावों को अपनाया भी और अपने मूल मूल्यों और पहचान को जिंदा भी रखा। बदलाव अक्सर एक रचनात्मक अनुकूलन था जिसने उन्हें मजबूत किया।
तीसरी बात, विविधता। हम अक्सर मूल अमेरिकी या इंडियन कह देते हैं, जैसे सब एक हों।
बिल्कुल गलत, ये सैकड़ों अलग अलग राष्ट्र हैं, अपनी भाषाएं, अपनी संस्कृतियां, अपना इतिहास, अपने अनुभव। किसी भी चुनौती का कोई एक इंडियन जवाब नहीं था। ये विविधता समझना बहुत जरूरी है।
जैसे भारत में भी है, हम भारतीय कहते हैं, पर कितनी विविधता है।
बिल्कुल वैसे ही। चौथा, संप्रभुता और स्वनिर्धारण। ये सिर्फ आज की मांग नहीं, ये उनका एक ऐतिहासिक हक है जिसे बनाए रखने के लिए वो लगातार लड़ते रहे हैं। संधियां, कोर्ट केस, राजनीतिक सक्रियता, सब उसी का हिस्सा है।
और पांचवा, संघीय नीतियों का वो दोहरा चरित्र जिसके बारे में आपने बताया।
हाँ, कि अमेरिकी सरकार की नीतियां अक्सर अमेरिका की अपनी जरूरतों या सोच को दर्शाती थी, ना कि मूल निवासियों के भले को ध्यान में रख के बनाई गई थी। लेकिन ये भी सच है कि मूल समुदायों ने इन नीतियों को चुपचाप माना नहीं, अपने विरोध और वकालत से उन्हें प्रभावित भी किया।
और आखिर में जमीन और रिश्तेदारी का महत्व।
हाँ, ये उनकी पहचान के दो स्तंभ थे। जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, पवित्र थी, जीवन का आधार। और रिश्तेदारी, किनशिप, वो समाज का आधार थी। औपनिवेशिक नीतियों ने इन्हीं दोनों पर सबसे ज्यादा चोट की।
इन किताबों में कुछ विचार या कहूं कि पंक्तियां ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे पहली ये, मूल लोग यूरोपीय उपनिवेशीकरण के निष्क्रिय शिकार नहीं थे, बल्कि औपनिवेशिक अमेरिका के निर्माण में सक्रिय भागीदार थे।
हाँ, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है ना। ये एक एकतरफा कहानी नहीं, बल्कि एक जटिल लेन देन, एक इंटरैक्शन की कहानी बन जाती है।
बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा विचार, जीवित रहने के लिए अनुकूलन की जरूरत थी और अनुकूलन के लिए चुनाव की। मूल अमेरिकियों ने दोनों में कमाल का कौशल दिखाया।
ये उनके लचीलेपन और उनकी रणनीतिक सोच को दिखाता है कि बदलाव कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का संकेत था। उन्होंने चुनाव किए, रणनीतियां बनाई।
तीसरा विचार उनकी विविधता पर फिर जोर देता है। मूल अमेरिकी लोगों की विविधता का मतलब है कि किसी भी ऐतिहासिक चुनौती के लिए कोई एक भारतीय प्रतिक्रिया नहीं थी।
यह हमें किसी भी समूह के बारे में सामान्यकरण करने से रोकता है, स्टीरियोटाइप से बचाता है।
और संघीय नीति पर ये टिप्पणी, संघीय भारतीय नीति मूल लोगों के कल्याण पर सोच समझकर विचार करने के बजाय अमेरिकी जरूरतों और नजरियों को ज्यादा दर्शाती थी।
ये मैं सिखाता है कि नीतियों के पीछे के इरादों का समझना कितना जरूरी है, वो क्यों बनाई गई, किसके फायदे के लिए।
और आखिर में ये विचार जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, समकालीन मूल अमेरिकी अनुकूलन और परिवर्तन के जरिए सांस्कृतिक संरक्षण के प्राचीन काम को जारी रखते हैं।
हाँ, मतलब पहचान बचाना कोई म्यूजियम में चीज रखने जैसा स्थिर काम नहीं है। ये एक जिंदा बदलती हुई प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है। अनुकूलन और परिवर्तन के जरिए ही वो अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। तो भाई, ये सब जानने के बाद हम इसे अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं, इसका हमारे लिए क्या मतलब है?
हाँ, ये अहम सवाल है।
पहली बात तो शायद ये कि हमें इतिहास को आलोचनात्मक नज़र से देखना सीखना चाहिए, खासकर वो कहानियाँ जो हमें आसानी से मिल जाती हैं, जो अक्सर विजेताओं या ज्यादा ताकतवर लोगों ने लिखी होती हैं। उन पर सवाल उठाना जरूरी है।
बिल्कुल। और ये रूढ़ीवादी धारणाओं यानी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में मदद करता है। किसी भी समूह के बारे में हमें याद रखना चाहिए कि हर समूह के अंदर बहुत विविधता होती है। जैसे हम भारत में ही देख लें।
सही कहा। दूसरा, आज के कई मुद्दे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हों, जमीन के अधिकारों से या सामाजिक न्याय से, उनकी जड़ें इतिहास में होती हैं। इतिहास को समझे बिना हम आज की चुनौतियों को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
जैसे भारत में आदिवासी समुदायों के संघर्ष, उन्हें उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखना कितना जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरा, ये हमें दुनिया को देखने के अलग अलग नजरियों की इज्जत करना सिखाता है। जैसे जमीन को सिर्फ खरीद फरोख की चीज ना मानना, उसे जीवन का आधार मानना। क्या आज के दौर में हम ऐसे नजरियों से कुछ सीख सकते हैं?
अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
और अंत में ये हमें दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय से मिलते समय उनके बारे में पहले से कोई राय बनाने के बजाय उनके अपने इतिहास, उनकी अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश करना, ये बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक यही रहा है, मूल निवासियों की वो एजेंसी, वो कर्तापन और वो जबरदस्त लचीलापन। उन्हें सिर्फ बेचालगी या विक्टिमाइजेशन के चश्मे से ना देखकर उन्हें कर्ता, रणनीतिकार और मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालने वाले लोगों के रूप में देखना, ये अमेरिकी इतिहास की हमारी समझ को ही बदल देता है। जब वो बदले नहीं, वो स्थिर रहे, ये कितनी गलत है। इन किताबों से साफ है कि उन्होंने हमेशा बदलाव और नएपन को अपनाकर ही अपनी पहचान जिंदा रखी है। ये उस झूठी कहानी, उस मिथक का खंडन है कि इंडियन खत्म हो रहे हैं या लुप्त हो रहे हैं।
हाँ, द वैनिशिंग इंडियन मिथ।
बिल्कुल, वो खत्म नहीं हुए, वे बदले हैं, अनुकूलित हुए हैं और आज भी अपनी जगह बना रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
सही कहा। ये किताबें हमें एक साथ ऐतिहासिक जख्मों को भी देखने और सांस्कृतिक जीवटता, उस रिजिलियंस को भी सराहने की चुनौती देती हैं। ये सिर्फ अतीत का दस्तावेज नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और दुनिया भर में स्वदेशी लोगों के संघर्षों के प्रति सम्मान और समझ जगाने का एक जरिया भी है।
बिल्कुल, उनके अनुकूलन और परिवर्तन के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण का वो प्राचीन काम आज भी जारी है, और ये हम सबके लिए सोचने की बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।